الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی 250 آیات تک ہم نے کر لیا تھا آج اسے آگے چلیں گے اس میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت سموئیل کے زمانے میں حضرت داؤد کو تالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا اور ان کے ساتھ جنگ کے لیے نکلا گیا اور جالوت سے مقابلہ ہوا اور حضرت داؤد نے جالوت کو مار ڈالا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عطا اللہ الملک والحکمت وعلمہ ما مما یشاء تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا کی حکمت عطا کی اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ان کو سکھایا تھا یہ جو آیت ہے اس کو اب آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے یہاں تک کر لیا تھا کہ فہزموہم بإذن اللہ انہوں نے اللہ کے اذن سے شکست دے دی کہ ان کو جالوت کے لشکر کو یہ جو بیان ہے یہ تورات سے ہٹ کر ہے تورات میں یہ بیان ہے کہ سب شکست کھا گئے تو یعنی تالوت کے لشکروں کو شکست ہوئی بس حضرت داؤد نے جالوت کو مار ڈالا یا اس کے بعد کچھ کامیابی مل گئی تو اس وجہ سے آگے چل کر اس کو ایک خاص پہلو سے اللہ تعالیٰ دلیل بھی بنائیں گے لیکن بہرحال اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شکست دی یہ بات بھی قرآن سے واضح ہو رہی ہے کہ ایک گروہ پیچھے ہٹ گیا تھا منافقت یا کمزوری ظاہر کی تھی انہوں نے اور ایک گروہ جو تھا وہ مناسب تعداد میں تھا انہوں نے حضرت تالوت کا ساتھ دیا نتیجتاً کامیابی حاصل ہوئی اور اس کامیابی میں جو بڑا کارنامہ تھا وہ حضرت داؤد کا جالوت کو قتل کرنا تھا حضرت داؤد جو ہیں ان کے بارے میں دو روایات ہیں کہ کیسے نمودار ہوئے اچانک ایک یہ بات ہے کہ حضرت داؤد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سموئیل نبی کی پہلے ہی نظر تھی آپ کے اوپر نوجوانی ہی میں تو ان کی طرف سے مسا بھی کر دیا گیا تھا سب کچھ ہو گیا تھا لیکن بنی اسرائیل کو سزا دینے کی غرض سے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور پھر اس طرح سے نمایاں کیا گیا حضرت داؤد کو یا نمایاں ہو گئے دوسری کہانی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت داؤد جو ہیں وہ بکریاں چراتے تھے ان کے بھائی جو ہیں وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے ساتھ گئے تھے لیکن وہ جو سپلائی ہوتی ہے اس میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ کھانا دینے گئے ہیں جنگ کرنے نہیں گئے کھانا دینے گئے ہیں وہاں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ منظر ہی اور ہے سارے ہی جالوت سے ڈر رہے ہیں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تو انہوں نے جا کر تالوت سے کہا کہ میں مقابلہ کرتا ہوں یہ ابھی لڑکے سے تھے تو تالوت نے سمجھا کہ بھئی یہ کیسے جنگ کرے گا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی میری بکریوں پر جو حملہ کرتا ہے نا شیر ہو ریچھ ہو میں اس کا جبڑا توڑ دیتا ہوں تو تم مجھے جانے دو تو ان کا جوش دیکھ کر تالوت نے کہا چلو آزما لیتے ہیں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تالوت نے اپنا جو زرہ تھی وہ بھی پہنایا اور سب کچھ تو وہ دو قدم نہیں چل سکے ان کو ٹریننگ نہیں تھی اس بات کی چرواہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ اتار دوں اور ویسے ہی جاؤں گا جیسے میں اپنے جنگلوں میں بکریاں چراتا ہوں تو اجازت مل گئی تو ان کے ہاتھ میں سلنگ ہوتی تھی گولفن جس کو ہم کہتے ہیں گولفن ہی ہوتی ہے کہ رسی میں پتھر پھنسا کے تو اس کو گھماتے ہیں ایسے اور پھر جھٹکے سے چھوڑتے ہیں ایسے تو پتھر رسی ہاتھ میں رہ جاتی ہے اور پتھر آگے جا کر ٹارگیٹ پہ لگتا ہے تو حضرت داؤد نے بھی ایسے ہی کی جالوت کے ساتھ تو سیدھا اس کے سر میں مارا ختم ہو گیا بھائی تو یوں جو جالوت کا جادو تھا وہ ختم ہو گیا تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھاگ اٹھے جو فلسطینی تھے تو یوں ان کو کامیابی حاصل ہوئی تو بہرحال جو بھی داستان ہو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا سا اشارہ کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا کیسے کیا تھا اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی کیونکہ اللہ تعالیٰ تاریخی طور پر تفصیلات نہیں کرتے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی کر دیتے ہیں البتہ یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت داؤد کو اس واقعے کے بعد بادشاہت ملی حکمت ملی اور جو اللہ نے سکھانا چاہتے تھے وہ سکھایا بادشاہ سے تو تاریخ سے واقف ہے کہ سب کو डेविड के नाम से सारी दुनिया जानती है कि बादशाह थे आप, ईसाई भी और यहूदी भी इस बात को मानते हैं। हिकमत से मुराद दो तरह की कुरान मजीद में हिकमत ज़ेर बहस आई है। एक हिकमत है जो ईमान वाली होती है, यानी ईमानियात को अल्लाह ताला ने हिकमत करार दिया है, और दूसरी हिकमत वो होती है जो अखलाक कहलाती है, कि अखलाकी चीज़। तीसरी हिकमत जो है वो कुव्वत फ़ैसला के तौर पर अल्लाह ताला ने बयान की है। तो यहाँ गालिबन या तो कुव्वत फ़ैसला वाली चीज़ मुराद है या दोनों मुराद हैं, तीनों कह लीजिए कि आपको दीन की समझ यानी ईमानियात की समझ, अखलाक की समझ और कुव्वत फ़ैसला जो बादशाहों को काजियों को चाहिए होती है। कुव्वत फ़ैसला का मतलब ये होता है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, इस वक्त क्या इकदाम किया जाए, ये सूरत हाल में क्या करना चाहिए। जिसको ये दानाई मिल जाती है वो दुनिया के काम बड़े आराम से करता चला जाता है। तो ये दानाई, इसको कहते हैं कुव्वत फ़ैसला। इस मौके पर आपने मुझसे ये सवाल किया तो मैं इसका क्या जवाब दूँ कि मुस्कित हो जाए या तसल्ली हो जाए सुनने वाले की। तो ये दानाई जो है इसको भी हिकमत कहा जाता है, अखलाकियात को भी हिकमत कहा जाता है कि लोगों के साथ हुस्ने सलूक करना है, वालदैन का एहतराम करना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। और जो अकीदा है हमारा, अल्लाह एक है, कायनात इम्तिहान के लिए बनी है, कल क़यामत होनी है, ये भी हिकमत है। तो तीनों इकट्ठे मान लीजिए, अल्लाह के नबी हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन मुल्क के बाद ज़्यादा गलबा कुव्वत फ़ैसला का है। वअल्लमहु मिम्मा यशा, और अल्लाह ताला ने उनको सिखाया जो अल्लाह ताला चाहते हैं। यहाँ मिम्मा शाह नहीं बोला गया, ये यशा बोला गया, मुजारे का सीगा बोला गया, माजी का नहीं। तो इसमें इसका मतलब है कि जो सिखाना चाहते हैं अल्लाह ताला इस तरह के लोगों को या इस तरह के मौक़ों पर या इस तरह की चीज़ों के लिए, वो सारे मानी इसमें आ जाएंगे। तो इसमें जो सिखाना चाहते होते हैं अल्लाह ताला, ये मफहूम हो जाएगा, जो सिखाया करते हैं अल्लाह ताला ऐसे लोगों को या इस तरह की चीज़ों के लिए, वो सिखा दिया। तो अब ये हज़रत दाऊद की जो बादशाह थी उसकी बशारत देकर या उसका बयान करके आगे फरमाया कि लौला दफ़ुल्लाह अन्नास बाज़हुम बिबाज़ लफसदतिल अर्ज़। अगर अल्लाह ताला, अब ये पीछे याद होगा कि पिछली कई आयतों से हम जिहाद की बात कर रहे थे, जिहाद के ज़िमन में ही वो औरतों के बाज़ मसाइल ज़ेर बहस आ गए थे, वो यतीमों की माँ, जंग में यतीम होंगे, यतीम होंगे तो उनका मसला पैदा हो गया, तो उस वहाँ से लेकर सारे मसले हल हुए थे। फिर वापस अल्लाह ताला अपने असल मज़मून पे आ गए थे, और उभारने के लिए हज़रत समोएल और तालूत के वाक़े को सामने ले आए, फिर आगे चलकर हज़रत दाऊद का ज़िक्र आ गया। अब उसमें फ़लसफ़ा बताया अल्लाह ताला ने कि जिहाद को अल्लाह ताला क्यों रवा रखते हैं, जिहाद को जायज़ क्यों करार दिया गया, उसकी वजह बताई है, उसकी हिकमत बताई है। और यह नहायत मुनासिब मौका था हिकमत बताने का, कि हज जिहाद की हिकमत ही बता दी जाए, क्योंकि हज़रत दाऊद को सिखाई गई हिकमत तो हमें भी अल्लाह ताला ने उस लिहाज से सिखा दी। तो हिकमत क्या है? वो हिकमत यह है कि अल्लाह ताला अगर लोगों को एक दूसरे के ज़रिए से ना धकेलता रहे तो ज़मीन फसाद से भर जाएगी। तो अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों को जंग की इजाज़त अच्छे मकासद के लिए इसीलिए दी है कि फितनों का सर कुचला जाता रहे। तो जिहाद की हिकमत दरअसल ये है कि अल्लाह ताला जब जिहाद की इजाज़त दे रहे हैं तो अल्लाह ताला को खूनरेजी पसंद नहीं है, कत्लो गारत पसंद नहीं है, लेकिन जब लोग फसादी हो जाते हैं तो उनका रास्ता रोकने के लिए अल्लाह ताला जिहाद की इजाज़त देते हैं। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि इसी वजह से इजाज़त दी गई, और ये भी इजाज़त दे दी गई कि अगर वो हमला कर दें तुम्हारे ऊपर तो तुम बैतुल हराम के पास भी जंग का जवाब दे सकते हो, हराम महीनों में भी जंग कर सकते हो। तो ये जिहाद की हिकमत कह लीजिए, जिहाद की फ़िलासफ़ी कह लीजिए। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इसको दूसरे लफ्ज़ों में बयान किया है कि अगर ऐसा ना होता तो ये गिरजे और ये मस्जिदें और ये सोमे बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो उस मज़मून को यहाँ जामे मानी में बयान किया है, वहाँ मज़हबी पहलू से बयान किया है। तो ज़मीन में जो फसाद है उसको रोकने के लिए जिहाद का हुक्म दिया गया है। इसका मतलब है कि जिहाद की जितनी भी सूरतें होंगी वो फसाद के पहलू से होंगी। ये शरीयत का असूल यहाँ से निकलेगा कि जंग की इजाज़त की जितनी भी सूरतें होंगी वो फसाद के कुचलने के लिए होंगी, इसके अलावा जहाद जायज़ नहीं होगा। चुनाचे रसूलों के ख़िलाफ़ जब कोई कौम उठती है तो उसको भी कुरान ने फसाद फिलर्स कहा है, तो उनके ख़िलाफ़ भी जंग की जा सकती। और अगर कोई किसी कौम के ऊपर जुल्म कर रहा हो, प्रोसिक्यूशन कर रहा हो, उनके ख़िलाफ़ भी जंग की जा सकती है। कमज़ोरों के ख़िलाफ़ कोई जुल्म रवा रखा हो किसी बादशाह ने किसी मुल्क में, उनके ख़िलाफ़ भी जंग हो सकती है। किसी बेगुनाह कौम पे हमला कर दिया है उनके ख़िलाफ़ भी। तो जहाँ जहाँ फसाद की कोई सूरतें होंगी वहाँ वहाँ मुसलमान जिहाद कर सकते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि जंग हो या हदूद व ताज़ीरात हो, अपनी हकीकत में एक ही है, जिहाद और हदूद व ताज़ीरात यानी इस्लामी सज़ाएं अपनी हकीकत में एक ही हैं। हदूद व ताज़ीरात अफराद के फसाद को रोकने के लिए हैं, जो अफराद पैदा करते हैं, कोई चोर बन गया, कोई डाकू बन गया। और जिहाद कौमों के फसाद को रोकने के लिए, कोई कौम सरकश हो गई है, किसी कौम ने सर उठा लिया, किसी कौम ने जुल्म करना शुरू कर दिया, तो हदूद व ताज़ीरात की हिकमत भी वही है और जिहाद की हिकमत भी वही है। तो ये जिहाद की हिकमत है, जो पीछे असल में मैंने अर्ज़ किया था पिछली दफ़ा कि कुछ एतराज़ात शुरू हुए जिनका जवाब अल्लाह ताला ने देना शुरू किया। यतीमों का एतराज़ पैदा हो गया, क्या खर्च करें इसका सवाल पैदा हो गया था, उन्हीं एतराज़ात में को तसल्ली बख्श जवाब देने के बाद अब बुनियादी हिकमत बताई गई। और गालिबन हज़रत दाऊद और तालूत का किस्सा बयान करने से पेश नज़र भी यही है कि यहूद एतराज़ कर रहे हैं या यहूद ये एतराज़ात सिखा रहे हैं, तो क्या उन्होंने खुद जिहाद का मुतालबा नहीं किया था? क्या उन्होंने खुद तालूत को बादशाह मुकर्रर नहीं करवाया था? क्या खुद उन्होंने जालूत का मुकाबला नहीं किया था? क्या हज़रत दाऊद ने जालूत को कत्ल नहीं किया था? क्योंकि हज़रत दाऊद की बड़ी हैसियत है, यहूद के यहाँ हज़रत दाऊद की इतनी बड़ी हैसियत है कि हज़रत ईसा का तारुफ भी लूक में, गालबन लूका में, हज़रत दाऊद ही के नस्ल में से होने से कराया गया है। यानी इतना ज़्यादा उनका असर है, क्योंकि वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बादशाह हैं, बहुत ही साले, बहुत ही आदिल नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। तो इस वजह से उनका जो मकाम है वो, और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर जैसी किताब मिली हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी अज़मत को बयान करती हैं। तो उनकी अज़मत की वजह से अब ये बात सामने आ गई कि हज़रत दाऊद जैसी शख्सियत अगर जंग कर सकती है, जालूत को कत्ल कर सकती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद की इजाज़त क्यों नहीं दे सकते? तो ये सारी कहानी इसलिए सुनाई थी और इसलिए उसी किस्से के फ़ौरन बाद इस हिकमत को बयान कर दिया है कि हज़रत दाऊद ने भी जो जिहाद किया था उसका मकसद भी यही था जो आगे बयान हुआ है। और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिहाद कर रहे हैं तो वो भी फसाद के कला कमा के लिए कर रहे हैं, अपनी कोई ज़ाती गर्ज उनके पेश नज़र नहीं है। ना हज़रत दाऊद के थी, ना शमूएल नबी के यहाँ थी, ना तालूत के यहाँ थी, ना अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ है। ठीक हो गया। वलकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। तो अगर ऐसा ना करते अल्लाह ताला तो फिर मेहरबान खुदा ना होते। यानी अगर अल्लाह ताला नेक लोगों को जिहाद से रोक देते, अंबिया जिहाद ना करते, सालेहीन जिहाद ना करते, तो जाबर किस्म के लोग सारे नेक लोगों को खा जाते। तो अल्लाह ताला लोगों पर चूँकि फ़जल वाले हैं इसलिए अल्लाह ने इसकी इजाज़त दे दी है, ये काम वो करते रहते हैं। इसके अंदर दो तीन बातें इकट्ठी हैं, एक तो ये कि जिहाद की इजाज़त का फ़लसफ़ा है, दूसरा ये कि अल्लाह ताला जो उठाते रहते हैं एक लोग ग्रोह को दूसरे ग्रोह से धकेल दिया, ये अल्लाह का वो दूसरा कानून भी, तकवीनी कानून के तौर पर भी चलता रहता। अल्लाह ताला ने जो चूँकि ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया, कभी भी नहीं किया, और सवाए अंबिया के जुज़वी तौर पर उनको जो कुछ ज़ाहिर होता है गैब में से वो अल्लाह ताला कर देते हैं, लेकिन जो दुनिया का निज़ाम अल्लाह के गैब में रहते हुए चल रहा है उसमें ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला बुराइयों को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। उसमें से एक पहलू से जवाब यहाँ दिया गया अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला बराह रास्त आकर चीज़ों को नहीं रोकते कि जुल्म हो रहा है कौमों के ऊपर, تو اللہ تعالیٰ براہ راست آ کر نہیں روکتے بلکہ لوگوں کے ذریعے سے ہی روکتے ہیں. اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دنیا کا نظام اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر خیر و شر کا شعور رکھ دیا گیا ہے, لوگ افراد کی صورت میں بھی. مثلا ہم کتنے ہی گناہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ محلے والے کیا کریں, اٹھا کر محلے سے نکال دیں گے. تو یہ لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے رہتے ہیں. پولیس ہے, ادارے بنے ہوئے ہیں, لوگوں کے پسند کی باتیں ہیں, ناپسند کی باتیں ہیں, وہ ساری چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رہتے ہوئے اسباب کے تحت ہی سب کچھ ایول کو کنٹرول کیا گیا ہے. تو پرابلم آف ایول میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایول کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے, تو بتایا کہ اس کا ایک طریقہ یہ اللہ نے اختیار کر رکھا. اب یہ فرما دیا کہ میں نے فضل کی وجہ سے جہاد کی اجازت دی ہے. یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں. فضل سے تو لوگوں کو جنگ کے قابل نہیں رہنے دینا چاہیے تھا, لیکن یہ خدا کے اس فلسفہ امتحان کے خلاف ہو جاتا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو جنگ کی صلاحیت ختم کر دیتے. آپ لوگوں کو وہ قصہ یاد ہوگا جو قرآن نے شروع میں سنایا ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ خون ریزی کریں گے, تو انسانوں نے خون ریزی کرنی ہی کرنی تھی, اللہ نے انکار نہیں کیا تھا, صرف ان کے نام بتا دیے تھے جو خون ریزی کرنے والے نہیں تھے. اب اسی پس منظر میں بات یہاں تک پہنچی کہ خون ریزی ہوگی, لیکن اس خون ریزی کو روکنے کے لیے اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی ہے. چوری کو اللہ تعالیٰ نے روکا, چوری کی سزا مقرر کر دی تاکہ روکنے کا ایک قانون بن جائے. قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اور اس کی سزا مقرر کر دی. چوری کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دے دیا, اس کی سزا مقرر کر دی. تو اس طرح سے روکنے کا عمل کیا گیا ہے. براہ راست انسانوں کو اس طرح سے نہیں بنایا گیا کہ وہ خون ریزی نہ کریں, وہ کریں گے. یہی ان کا امتحان ہے کہ وہ جائز جگہوں پہ کرتے ہیں کہ ناجائز جگہوں پہ کرتے ہیں. اب جو پیچھے واقعہ سنایا گیا ہے اس میں طالوت کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے. تورات میں ناپسندیدہ شخص ہے. طالوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں نیگیٹو تبصرہ کوئی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا کہ وہ اللہ کی مرضی نہیں تھی. تورات میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی نہیں تھی تو زبردستی ہوا. پھر اسی طرح جنگ میں ہزیمت ہوئی کہ فتح ہوئی, قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح ہوئی, ٹھیک ہے. اور سارے کے سارے لوگ برے نہیں تھے, ایک بڑی تعداد بری تھی لیکن ایک بڑی تعداد اچھی بھی تھی جو جنگ کے قابل تھی. تو یہ سارے پہلو جو ہیں یہ قرآن مجید اصلاح کر رہا ہے تورات کے واقعے کی. اس لیے اس کلام کا خاتمہ یہاں کیا کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ تم آپ کو جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں پوری سچائی کے ساتھ. جو واقعہ طالوت کا اور حضرت داؤد کا ہے وہ سچا واقعہ یہ ہے, وہ نہیں ہے جو تورات میں بیان ہو گیا ہے. تو یہ آپ کے اللہ کی آیتیں ہیں جو پڑھ کر سنائی جا رہے ہیں. اس کی روشنی میں تورات کو ٹھیک کر لینا چاہیے. مطلب یہ ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم آپ کو یہ آیتیں سچ سچ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے. تو یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل بن رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, سچے رسول ہیں. اس لیے وہ باتیں سچائی کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں جو تورات میں تھوڑی بہت خراب ہو گئی ہیں, اس میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے. میں نے یہ پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے, بعض مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ بھی نہیں کیا لیکن بائبل کی اصلاح کر دی ہے. مثلا میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ حضرت یوسف کے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے مصر کے, ان کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا, تورات میں ان کو بھی فرعون کہا گیا ہے. قرآن مجید نے قصہ یوسف میں جب پہنچیں گے تو وہاں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ملک کا لفظ استعمال کیا. تو یوسف کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ ہی تھا, الملک کہلاتا تھا, نہ کہ فرعون کہلاتا تھا, ٹھیک ہے. جبکہ موسیٰ کے زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ فرعون کہلاتے تھے, اور دونوں کی قومیں بھی الگ الگ ہیں. حضرت یوسف کے زمانے کے جو حکمران تھے وہ عرب تھے, اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے جو حکمران تھے وہ غیر عرب تھے, وہ قبطی تھے. تو ایسے ہی فلسطینی جو ہیں, جو اصل فلسطینی ہیں وہ عرب نہیں ہیں, نہ اولاد ابراہیم میں سے ہیں, وہ کوئی ادھر سے مغرب کی قوم ہے کوئی, جنہوں نے آ کر یہاں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے तो जालूत उनका आदमी था, ना कि अरबों की किसी नस्ल से था, ना कि औलाद इब्राहिम में से था। तो इस फ़लस्तीनी जो इस वक्त फ़लस्तीनी है उनका तो मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि वो मिक्स ब्रीड हैं, लेकिन जो असल फ़लस्तीनी थे जिनको फ़लिस्ती कहा गया है तौरात में, वो दरअसल मगरबी अकवाम में से। अब उनके जो आसार वगैरह मिल रहे हैं उससे मज़ीद बातें वाजे होती चली जा रही हैं कि वो उनका अरबों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो नस्ल ही दूसरी है। तो बहरहाल ये फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ अल्लाह की आयात हैं जो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, और आप बिलाशुबा अल्लाह के रसूलों में से हैं, इसलिए आप सच्ची बातें बता रहे हैं। जो लोगों ने ख़राब कर दी हैं वो रवायात ज़रूर होंगी लेकिन वो सच्ची रवायात नहीं है। ये सच्चा किस्सा आपको सुना दिया गया है, पूरी दास्तान इसके अंदर। तालूत भी अच्छा आदमी है, हजरत दाऊद ने कत्ल किया है, शिकस्त नहीं हुई है, फतह हुई है, और ये बात के पूरी की पूरी कौम ख़राब थी, कमज़ोर थी, ऐसा नहीं है। कुरान ने इसका कोई इशारा नहीं किया, बस ये है कि बल्कि कुरान के बयान से लग नहीं रहा कि अचानक दाऊद आ गए, लग रहा है कि वो लश्कर के अंदर शामिल थे। लेकिन भारत कुरान ने चूँकि बयान नहीं किया तो हम इसलिए जितनी बात बयान हुई है वहीं तक रहते हैं। तो ये अल्लाह की आयतें हैं जो अल्लाह ताला आपको पढ़ के हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं पूरी सच्चाई के साथ। इनमें कोई शुबा नहीं है, यही हकीकी वाक़या है, यही सच्चा वाक़या है, और बिलाशुबा आप अल्लाह के रसूलों में से। ये दो तीन मकामात पे अल्लाह ताला ने जहाँ गैब की बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं जो तौरात में मौजूद नहीं थी, वहाँ अल्लाह ताला ने ये असलूब इख्तियार किया है कि आप अल्लाह के रसूलों में से हैं, यानी ये आपके रसूल होने की दलील है कि आप सही बात बता रहे हैं, गलत बात नहीं बता रहे। ये उन सवालों का भी जवाब है जो हमारे यहाँ बाज़ मुस्तशरिकीन ने, ओरिएंटलिस्ट ने की हैं कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल तौरात और इंजील से इक्तबास करते हैं, वहाँ से फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं जी लो वही मुझ पर नाजल हुई है। तो कुरान मजीद ने कई बातें ठीक की हैं जो तौरात की गलत थी। तौरात चूँकि तर्जमा है, लोगों ने बाद में मुदवन की है, कई चीज़ें अपनी तरफ से डाल दी हैं, असल जो तौरात थी वो गलती से पाक थी। लेकिन अब जो हम तक पहुँची है वो तर्जुम है, उसमें क्या क्या इजाफे हो गए। मिसाल के तौर पर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के साथ हदीस लिखने की इजाज़त दे देते हैं तो हमारा कुरान भी खालस ना रहता। तो तौरात और इंजील में अल्लाह का कलाम और हदीसें जो उन अंबिया की थी वो इकट्ठी कर दी गई हैं गोया इस तरह से, और कुछ उलमा की बातें भी इकट्ठी कर दी गई। तो इसलिए तौरात अपनी खालस शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी भी उसमें हक को तलाश किया जा सकता है, वो मौजूद है। अब जो रसूलों का मामला है, यहाँ जरे बहस आ गई ये बात के रसूलों ने जो मामलात किए, रसूलों के ज़रिए से भी जंगें हुई, रसूलों की खातर भी जंगें हुई, ये भी तारीख़ का एक हिस्सा। ख़ुद नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो तीन जंगें जो हैं वो 6-7 बल्कि वो नुमाया हैं, और हज़रत मूसा भी अगर जंग करते तो करते, सवाए हज़रत ईसा के जितने भी अंबिया हैं जिनको हुकूमत मिली है उन्होंने जंग की है, जितने भी अंबिया हैं, हज़रत दाऊद हैं, हज़रत सुलेमान हैं, और हज़रत दाऊद हैं, हज़रत बाद में कितने ही बुज़ुर्ग रहे हैं जिनके यहाँ हुकूमत थी और उन्होंने जिहाद किया है। तो उस पहलू से आगे बात चल पड़ी है। तिलकर रसुल फ़ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिन्हुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस। तो ये जो रसूल हैं इनको हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से कुछ वो हैं कि जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है, और इनमें से कुछ वो हैं जिनको दरजात की बुलंदी दी है, और हमने ईसा इब्ने मरियम को मोजज़ात दिए थे और उनको रूहुल कुदस के ज़रिए से मदद भी की थी। अब ये अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने रसूलों को एक दूसरे पर फजीलत दी है। ये फजीलत जो है ये किस किस पहलू से, तीन चीज़ें यहाँ जिक्र की गई हैं। पहले असूली बात की है कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। उनमें से एक शख्स वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया बराए रास्त, ये हज़रत मूसा हैं जिनको कलीमुल्ला भी कहा गया, और दूसरी है रफ़ा बाज़हुम दरजात, बाज़ को दरजात की बुलंदी दी है, ये दूसरी किस्म है। तीसरी किस्म है कि बहुत मौजज़ात दिए हैं, वह ईसा की ज़ात ग्रामी है, व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदस, और उनकी ताईद की है रूहुल कुदस के ज़रिए से। ये गालबन जो सलीब देते वक्त जो उनके साथ मामला हुआ है उसकी तरफ इशारा है, क्योंकि किसी और नबी को इस तरह से जिंदा हालत में या वफात की हालत में नहीं उठाया गया आसमानों की तरफ। अब जो दूसरा हिस्सा है मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, वाज़े हज़रत मूसा के बारे में, और अगला हज़रत ईसा भी वाज़े हैं। दूसरे मकाम पर दाऊद का ज़िक्र है, उनको ज़बूर दी गई, वो भी वाज़े हैं। लेकिन जो बीच में यहाँ पर जो सेकंड है कल्लम अल्लाह के बाद, वरफ़ा अबाज़ुहुम दरजात, इसका जो साहिब हैं जो भी रसूल, उनका ज़िक्र नहीं है। ये याद रखिए कि कलाम के अंदर बाज़ुकात हम अपने बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो अपनी तरफ इशारा नहीं करते हैं, सिर्फ़ उस चीज़ का हवाला दे देते हैं जो नज़र आ रही होती है, जो चीज़ उसका हवाला दे देते हैं। मिसाल के तौर पर भाई यहाँ पर सुर्ख कपड़ों वाले भी हैं, लाल कपड़ों वाले भी हैं, नीले कपड़ों वाले भी हैं, और अपनी तरफ भी इशारा कर देंगे, और सफ़ेद कपड़ों वाले भी हैं, तो यूँ इशारा हो जाए। अब जो सफ़ेद जो मेरे रंग के कपड़े हैं वो भी बयान हो गए हैं, लेकिन मैं उसका बयान नहीं करूँगा, लेकिन ये कह दूँगा सुर्ख कपड़ों वाले फ़लाँ साहब, नीले कपड़ों वाले और सफ़ेद कपड़े वाले, या ये ब्राउन से कपड़े वाले। अपने बारे में जिक्र मैं सिर्फ़ नाम लिए बगैर कर जाऊँ, कोई पता होता है सबको कि क्या बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का बयान है कि हज़रत मूसा से कलाम किया गया, हज़रत ईसा को मुजज़ा दिए गए, और हज़रत दाऊद को ज़बूर दी गई दूसरे मकाम पे, और रफ़ा बाज़ुहुम दरजात, और उनमें से एक रसूल को दरजात में बुलंदी दी है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर आपको हज़रत ईसा जैसे मौजज़ात भी नज़र नहीं आएंगे, ये भी दिखाई नहीं देगा कि कोहे तूर पर को बातचीत हो रही है, लेकिन ये रसूल वो है कि जिसको बस दरजात में बुलंदी दी गई है। तो मेरा ज़हन इधर जाता है कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। तो दरजात का मतलब यह है कि आप तकवे में, आप ख़त्मे नबूवत के हवाले से, आप अंबिया में कुरान मजीद जिस तरह से आपको मिला है, इस तरह के बहुत सारे दरजात हैं जो आपके साथ ख़ास हैं। जितने अंबिया हैं उनको जो मौजज़ात मिले हैं, कुरान जैसा मौजज़ा किसी को नहीं मिला। अब मैं तौरात और इंजील की असल से वाकिफ़ नहीं हूँ, हमारे पास तो तराजम आए हैं, तो इसलिए ये जसारत कर रहा हूँ कि वो ऐसी किताबें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अगर कुरान मजीद जैसी थी तो फिर एक अलग बात है। लेकिन कुरान मजीद का ये मौजज़ा भी है, और ऐसा मौजज़ा भी है कि जो महसूस किया जा सकता है, क़यामत तक के लिए कायम है। बाकी मौजज़ात अंबिया के साथ ख़त्म हो गए, लेकिन ये क़यामत तक कायम है। इसलिए इसकी तो आपके ख़ातमुन्नबीयीन होना, ख़ातमुन्नबीयीन मुसलमानों के मानी में, ना कि उस मानी में जिसमें बाज़ लोग लेते हैं, तो ख़ातमुन्नबीयीन होना और आपका जो कुरान मजीद आपके सामने है, और ज़ाहिर है कि आपके अंदर जो हिल्म था वो भी बहुत आला दर्जे का था, इस तरह की चीज़ें सारी इसमें शामिल होंगी। तो अगर अल्लाह ताला चाहते, आगे फरमाया कि वलौ शा अल्लाहु मक्ततल लज़ीन मिन बादिहिम मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, अगर अल्लाह ताला चाहते तो इन दर्जे वाले रसूलों के आने के बाद, इन बुलंद मर्तबा रसूलों के आने के बाद, लोग उनके मौजज़ात देखने के बाद हरगिज़ ना लड़ते। जिहाद की बात चल रही है, उसको भूलना नहीं है, तो जिहाद में रसूलों की खातिर भी लोग लड़े, लेकिन रसूलों के मौजज़ात आने के बाद और रसूलों की दावत आने के बाद चाहिए था कि ये ना लड़ते, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। तो इस वक्त नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कौन लड़ रहा था जब कुरान नाजिल हो रहा था? यहूद कुरैश को उकसा रहे थे। यहूद कौन है? हज़रत मूसा को मानने वाले। ईसाई कौन है? हज़रत ईसा को मानने वाले। शानदार नबियों को मानने वाले कुरैश मक्का को उकसा रहे थे कि वो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करें। तो उस तरफ अब जहन को जाना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो इन आला दर्जे के रसूलों के बाद इनके लोग ना लड़ते, लेकिन लड़ाई हो गई इस वजह से। हम क्यों अहले किताब को बुरा समझते हैं? कि हमारे रसूल सबसे बुलंद थे, तुम्हारे रसूल उतने बुलंद नहीं हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरा ये मसलक नहीं है कि मैं किसी रसूल को नीचा करूँ या ऊँचा करूँ, ये ना मेरे अंदर सलाहियत है, ना कद काट है, ना मुझे इसकी इजाज़त है। मजहबी तौर पर खुदा की तरफ से ये अल्लाह का काम है कि वो किसी नबी को फजीलत दे, मैं कुछ नहीं कह सकता। जहाँ जो आयतों में लिखा हुआ था वो मैंने आपको बयान कर दिया कि अल्लाह ताला ने खुद जो फजीलत दी है वो बयान कर दी। तो मेरा आपका ये हक नहीं है कि हम रसूलों के दरमियान फ़ैसला करें कि कौन बड़ा रसूल है कौन छोटा, ठीक है। तो लेकिन लड़ाई इसी पर होती है। हमारी उम्मत, मैंने खुद पाकिस्तान हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये मुनाज़रे हो रहे थे अंग्रेज़ों के साथ, तो उस ज़माने जो किताबें लिखी गई हैं उसमें अब उन्होंने कह दिया कि हमारे नबी सबसे आला हैं, क्योंकि उनके ये मौजज़ात थे, उन्होंने शादी भी नहीं की, उन्होंने कोई जंग भी नहीं की। उसके जवाब में हमारी तरफ से कुछ किताबें लिखी गई जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने की कोशिश की, उनकी गलतियाँ दिखाई गई, उनके नुकसान, उनके नक्श दिखाए गए। ये काम मेरा आपका नहीं है। वो जो नक्श बताए गए वो अल्लाह ताला माफ़ करें, वो किसी जगह बयान भी नहीं हुए, बस आपने खुद निकाल निकाल कर अंग्रेज़ों को शिकस्त देने के लिए। तो अंग्रेज़ों को शिकस्त देने के लिए दूसरे रास्ते मौजूद थे, उसमें नबियों का मुआसना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये अब अल्लाह ताला ने बताया कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो रसूलों के बाद ये झगड़ों में ना पड़ते, कत्लो गारत में ना पड़ते, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती कभी नहीं की। जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ, किस्सा आदम को जहन में रखिए, लोगों ने लड़ना ही था मज़हब की बुनियाद पर, ज़मीनों की बुनियाद पर, औरतों की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर लड़ना था। आज भी लड़ रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर काबिल और हाबील से लेकर कह लीजिए आज तक कई असबाब हैं लड़ने के। इस वक्त देखिए कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इंसानों ने लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि उनके जज्बात होते हैं, उनके मलकियत की चीज़ें होती हैं, गैरत की चीज़ें होती हैं, हमीयत की चीज़ें होती हैं, उनके लिए वो लड़ते हैं। अब लड़ना चाहिए नहीं, लड़ना सिर्फ फसाद के ख़िलाफ़ चाहिए। तो जो फसाद पैदा करता है उसके ख़िलाफ़ जंग हो सकती, लेकिन उसके भी कवायद हैं, कैसे होगी। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने अगर चाहता तो इनको ज़बरदस्ती इनके मिजाज ऐसे बना देता रसूलों के बाद, जो भी रसूल को मान ले जंग नहीं करनी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो फरमाया वलाकिन इख्तलफु फमिनहुम मन आमना वमिनहुम मन कफर, लेकिन उन लोगों ने इख्तलाफ़ किया, किसी ने मूसा को बड़ा मान लिया, किसी ने ईसा को बड़ा मान लिया, किसी ने मोहम्मद अरबी को बड़ा मान लिया, और इख्तलाफ़ करते रहे। चुनाचे इसी फजीलत की वजह से कुछ ने इनकार कर दिया, कुछ ने मान लिया, ठीक है। तो मसलन यहूद ने हज़रत ईसा का और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, किस वजह से, कहते मूसा के शहर से नहीं निकल पड़े। हज़रत मूसा छोटे रसूल नहीं हैं, शहर से मतलब है उनका जो असरात हैं, ज़ाहिर है कि बहुत बड़े शख्सियत हैं हज़रत मूसा भी, फिरौन जैसी हस्ती को शिकस्त देकर आए हैं, यहूद के लिए जो नेमतें और जो कुछ लेकर आए हैं अपने साथ, जो दरिया अबूर कराया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं उनके साथ, तो उनका जो मकाम मरतबा है यहूद उसको छोड़ नहीं पाए, चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, जंग पे आमादा हो गए। इसी तरह उन्होंने हज़रत ईसा का भी इनकार किया, हालांकि हज़रत ईसा के मौजज़ात हज़रत मूसा के मौजज़ात से कहीं ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो तस्लीम नहीं कर सके। तो इस तरह से ये मामला हुआ। अब अल्लाह ताला ने यहाँ ये बताया कि मैंने अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असा नहीं दिया, कलाम नहीं किया तूर पर, और हज़रत ईसा जैसे मुर्दों को ज़िंदा करने की मौजज़ात नहीं दिए, लेकिन मैंने इनको भी दरजात में बुलंदी दी है। तो ला खैरो, इस बात को समझो और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा लड़ाई ना करो, मान लो उनकी बात। दावत का ये पहलू यहाँ मौजूद है, लेकिन बहरहाल इख्तलाफ हो गया है, इख्तलाफ हो गया है। तो फिर दोबारा दोहराया, वलौ शा अल्लाहु मक्ततलू, अगर अल्लाह ताला चाहते तो ये लड़ाई ना करते, लेकिन वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, जो अल्लाह ताला चाहते हैं वो कर गुज़रते हैं। चुनाचे अल्लाह ने कानून ये बनाया कि जो भी अपनी मर्ज़ी से नबियों को माने बिस्मिल्लाह, नहीं मानता लड़ने पे आ जाता है तो जंग होगी, जिहाद होगा। तो जिहाद के फ़लसफे में पहली बात ये बताई कि फसाद रोकने के लिए ऐसा किया गया है, दूसरी बात ये बताई कि रसूलों के वजह से रसूलों के ख़िलाफ़ जब उठ खड़े होते हैं तो तब भी अल्लाह ताला इजाज़त दे देते हैं जंग की। तो जंग की इजाज़त में गोया अंबिया की फजीलत बायस बन जाती जंगे करने की, एक नबी को मानने की एक नबी को ना मानने की, और फसाद पैदा हो जाता है, किताल शुरू हो जाता है। तो अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हदायत देते, जैसे अल्लाह ताला ने दूसरे का बयान किया हदायत का, तो उसी तरह यहाँ से बयान किया है कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो कोई भी कत्ल करने पे आमादा ना होता, जंग करने पे कोई ना आता, लेकिन लोगों को चूँकि मैंने आज़ादी दी है ताकि वो अपने शऊर से हदायत को माने, अपने शऊर और अकल से रसूलों को माने, तो असल काम तो ये होना चाहिए था कि जो भी अल्लाह की तरफ से रसूल आ जाए और साबित हो जाए तो मान लेना चाहिए, आ जाए और साबित हो जाए, दो शर्तें मैं लगा रहा हूँ, आए और साबित हो जाए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी रसूल ने नहीं आना है, ये वाज़े रहना चाहिए। इसलिए ये सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। सूरह अल बकरा के आगाज़ ही में अल्लाह ताला ने बता दिया हुआ है कि हमसे मुतालबा सिर्फ दो चीज़ों का है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का और आपसे पहले चीज़ों को मानने का, आपके बाद किसी चीज़ को मानने का मुतालबा हमसे नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ माजी के हवाले से कि रसूल जब आ जाए और वो साबित हो जाए कि वो अल्लाह का सच्चा रसूल है तो उसे मानना चाहिए था। और आज भी जिन लोगों के लिए जो मोहम्मद अरबी को नहीं मान रहे, हज़रत ईसा को नहीं मान रहे, उनको चाहिए कि वो साबित अगर हो गया तो वो मान लें। तो माजी के रसूलों के बारे में ये कानून दायमी है कि तमाम रसूलों को मानना है। जिनके बारे में इख्तलाफ हो गया था, अब इख्तलाफ अगर ज़ाहिल हो गया तो मानना लाजम होगा। तो जो आज हज़रत ईसा को नहीं मान रहे और मोहम्मद अरबी को नहीं मान रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सब को, इन दोनों को मानना होगा। और जो किसी भी नबी को नहीं मान रहे जैसे हिंदू हैं, उनको भी अगर सच साबित हो जाए तो मानना होगा। ये कानून है, लेकिन इस कानून में फजीलत आड़े आ जाती है बाज़ लोगों के लिए, तो उस वजह से वो लड़ने आ जाते हैं। लड़ने आ जाते हैं तो अल्लाह का रसूल मौजूद है, जब अल्लाह के रसूल से लड़ेंगे तो जिहाद होगा। तो रसूल के मुकाबले में, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि रसूल के मुकाबले में आना दरअसल अल्लाह के मुकाबले में आना है, फसाद की एक बदतरीन शक्ल है कि आप अल्लाह के रसूल को मारने पर तुल जाएं, आप अल्लाह के रसूल को कत्ल करने पर आमादा हो जाएं, तो इस वजह से वहाँ भी जिहाद होगा। इसको बयान किया वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, कि अल्लाह ताला अपने कवानीन के मुताबिक, अपने सिफात के मुताबिक, अपने मंशा के मुताबिक जो चाहते हैं कर देते हैं। तो दुनिया में जो कानून अल्लाह ने बनाया है वो आज़ादी का कानून है, और आज़ादी के कानून में ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला बिलजबर दीन की हदायत दे दें। इसलिए फिर अगली आयतों में चलकर अल्लाह ताला ला इकराह फिर दीन के ऊपर भी बात करेंगे। तो अब चूँकि टाइम हो चला है तो यहाँ पर रोक लेते हैं। तो ला इकराह फिर दीन, ला इकराह फिर जिहाद, किसी चीज़ में भी इकराह नहीं है। ज़बरदस्ती कोई नेकी अल्लाह ताला दिलों में नहीं डालते, ज़बरदस्ती कोई चीज़ अल्लाह ताला हदायत के हवाले से फसाद रोकने के पहलू से नहीं करते, ताकि हम आज़ादी के साथ इम्तिहान दे सकें। और फिर जब इम्तिहान में फ़ेल होंगे तो या दुनिया में सज़ा मिलनी है कौमी हैसियत से, अफराद की हैसियत से आखिरत में सज़ा मिलनी है। तो यहाँ रोक लेते हैं। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।